ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से आप सबका स्वागत है अलवर कथा में। कौन सी कथा? तो बहुत अलग अलग प्रकार की कथाएं हैं, गौर कथा, कृष्ण कथा, राम कथा, और ये कौन सी कथा है? अलवर कथा। अलवर कथामृत की। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से इन अलवरों के बारे में हमें सुनने का, समझने का और एप्रिशिएट करने का मौका मिला है। हम अपनी शुद्धि के लिए उनका गुणगान कर रहे हैं। तो हमने लगभग 7 अलवर्स के बारे में सुना है, तो मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा उनके नाम आपके द्वारा। फर्स्ट अलवर पोइगे अलवर, सेकंड भूतद अलवर, थर्ड पे अलवर, फोर्थ तिरुमलिशाही अलवर, आगे नम अलवर, नेक्स्ट मधुर कवि अलवर, और फिर कुलशेखर अलवर। तो अभी जो नंबर 8 है पेरिय अलवर। कौन से अलवर? तो पेरिय अलवर ये गरुड़ के अंश अवतार है। इनका जन्म हुआ था श्री विल्ली पुत्तर नाम के गांव में, जिनके पिता का नाम था मुकुंद भट्ट और मदर थी पद्मावली। स्वाति नक्षत्र में संडे के दिन वो अपीयर हुए थे। हर कलयुग शुरू होकर 50 साल हो गए थे। तो श्री विल्ली पुत्र नागर कोई या कन्याकुमारी से बहुत नजदीक है, इन फ्यूचर कभी आप जा सकते हैं, और बहुत फेमस प्लेस है विशेष रूप से ये पेरिय अलवर के लिए, जिनका दूसरा नाम है विष्णु चित्त। क्या नाम है? नाम है विष्णु चित्त। और एक उनका विष्णु चित्त में जिसका चित्त सदैव विष्णु में लगा रहता है, ऐसे विष्णु चित्त जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी थे। और उनका दूसरा नाम था भट्टनाथ। भट्टनाथ में इस ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से पेरिय अलवर की कई सारी विशेषताएं हैं। और पेरिय अलवर शिवली पुत्र में निवास करते थे। वहां भगवान विष्णु के विग्रह है वटपत्र शाही। कौन से विग्रह है? वटपत्र शाही। वट के पत्ते पर जो शयन करते हैं उनको वटपत्र शाही कहते हैं। जैसे आप जगन्नाथपुरी में जाओगे तो जगन्नाथ टेंपल में जो अक्षय वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष के नीचे कृष्ण का एक विशेष डेटीज है, और मुझे पर्सनली बहुत सुंदर लगते है वो, जहां कृष्ण एक पत्ते के ऊपर लेटे हैं और अपना अंगूठा अपने मुंह में डाला हुआ है, पांव का अंगूठा। कौन सा अंगूठा? हाँ, तो वटपत्र शाही, वटश पत्रश। बिलमंगल ठाकुर कहते हैं करार विंदे पदार विंदे, हाँ वटश पत्रश। वो कहते कि वट के पत्र पे जो शयन करते हैं ऐसे कृष्ण का हे मेरे मन सदैव गुणगान करो, उनके नामों का उच्चारण करो। तो ऐसे बचपन से ही ये जो पेरिय अलवर है भगवान से अत्यधिक आसक्त थे, और बचपन से भगवान के बारे में उनकी जो लीलाएं हैं उनको निरंतर सुनते रहते थे। और ये श्रवण करने से उनका भगवान से आसक्ति का जो बॉन्ड है वो बहुत तीव्र हो गया। और दूसरी चीज कि ये इन्होंने भगवान की एक विशेष सेवा को स्वीकार किया, और वो सेवा थी भगवान के लिए जो फ्लावर्स हैं उस गार्डन की देखभाल करना, तुलसी गार्डन, फ्लावर गार्डन, और तुलसी और फ्लावर्स का माला पर्सनली बनाना भगवान कृष्ण के लिए, या अपने जो विग्रह है वहाँ वटपत्र शाही के लिए। तो ऐसे ये विष्णु चित्त कभी भी गुरुकुल में नहीं गए, बचपन से उन्होंने जोड़ दिया भगवान की सेवा करने पर, भगवान का नाम रूप गुण लीला का उच्चारण करना। तो उनको विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उनका हृदय डिवोशन या भक्ति भावना से भरा हुआ था। तो जो दक्षिण मथुरा है, हमने दक्षिण मथुरा विजिट किया था, कौन सा टाउन है वो? मदुराई। क्या कौन सा टाउन है? मदुराई को दक्षिण भारत की मथुरा कहते हैं। तो ऐसे मथुरा में, वो मदुराई में एक राजा थे, पांडे वंश के राजा थे, जिनका नाम था वल्लभ देव। तो ऐसे राजा कभी कभी ब्राह्मणों का वेश बदलकर मदुराई में अलग अलग स्थानों में ट्रैवल करता था। और एक दिन उन्होंने एक ब्राह्मण जो शयन कर रहा था उसको जगाया, और उस ब्राह्मण ने ब्राह्मण को पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, मैं तो गंगा तीर्थ यात्रा से आया हूँ, गंगा स्नान करने के लिए गया था। और उसको पूछा कि आपने क्या सीखा वहां? तो उन्होंने बहुत मूल्यवान उपदेश दिया कि जीवन कितना क्षणिक है, और वार्धक्य जीवन में इतना जल्दी आ जाता है जो हमारे जीवन की हर चीज को हमसे छीन लेता है, और मृत्यु हमारे सामने खड़ा रहता है। तो एक प्रकार से उन्होंने ये जीवन की अशाश्वतता के बारे में उस ब्राह्मण ने इस राजा को बोला। तो राजा जब अपने महल में गया वापस और बैठ गया जाकर वहां, तो उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ गोल क्या है, क्या चीज है जो मनुष्य एक व्यक्ति ने अपने जीवन में अचीव करनी चाहिए। इस प्रकार से राजा ने प्रश्न पूछा। राजा ने कहा कि मेरे जीवन में जो आंखों से दिखता है वो सारा मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है, लेकिन आंखों से न दिखने वाली चीज मैंने प्राप्त नहीं की और मैं वो देखना चाहता हूं। इट मींस वो किसको जानना चाह रहे थे? भगवान को जानना चाह रहे थे अपने जीवन में। तो उन्होंने कई सारे अपने जो मंत्री हैं, नजदीक के जो ब्राह्मण हैं, उनको बुलाया और उनसे सीखना चाहा। हाँ, तो अलग अलग जो ब्राह्मण वगैरह आते थे, अलग अलग दिग्गज पंडित गण आते थे, उनके एक मंत्री ने कहा कि ये चीज तो वेदों वैदिक शास्त्रों के जो प्रमाण है उसको स्वीकार करके समझना चाहिए भगवान के बारे में, जीवन के परम लक्ष्य के बारे में, या भगवान को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली वो जानना चाह रहे थे, और ये भी जानना चाह रहे थे कि कौन सर्वश्रेष्ठ है जो वास्तव में पूजनीय है। तो इस प्रकार से राजा ने जैसे ये इनकी अलवर के बारे में, वो मदुराई टेंपल में हमने सुना था पेरी अलवर की जो कथा है। तो फिर क्योंकि ये जो घटना है मदुराई में हुई थी अलवर टेंपल में, तो पेरी अलवर फिर अलग अलग जगह से अलग अलग पंडित गण ब्राह्मण गण आते हैं और वो प्रेजेंट करते हैं अपने नॉलेज स्किल आदि बताते हैं। और राजा ने ये रखा था कि एक सोने की थैली को ऊपर रखा था चांद के, जो सही उत्तर देगा वो थैली अपने आप आकर उसके हाथ में गिरेगी या गोद में आ जाएगी। तो कई सारे बड़े बड़े विद्वान आकर अपना अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते थे, लेकिन हर कोई व्यक्ति फेल हो रहा था, वो थैली कभी भी किसी के हाथ में आकर गिर नहीं रही थी। तो उस समय भगवान को लगा कि मेरे भक्त का विजय होनी चाहिए, मेरे भक्त की महिमा बढ़नी चाहिए। कृष्ण हमेशा चिंतित रहते हैं अपने ग्लोरीज से ज्यादा उनको अपने भक्त की ग्लोरीज प्रिय है, ये कॉम्पिटिशन हमेशा चलता है। भगवान अपने भक्त की महिमा बढ़ाना चाहते हैं और भक्त सदैव भगवान की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। तो भगवान को अचानक याद आया, किसका याद आया? पेरी अलवर का, विष्णु चित्त का। तो भगवान ने सोचा, भगवान स्वप्न में आकर कहते हैं, विष्णु चित्त तुम चले जाओ उस सभा में और वहां जाकर मेरा गुणगान करो, मुझे स्थापित करो, जीवन का परम लक्ष्य मैं हूं, ये स्थापित करो। तो पेरी अलवर सोचते हैं मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गुरुकुल नहीं गया, मैंने वेदों को नहीं पढ़ा, शास्त्रों से मैं अवगत नहीं हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ? भगवान ने कहा नहीं, आपको जाना होगा। तो विष्णु चित्त जाते हैं और जैसे ही विष्णु चित्त वहां पहुंचते हैं और राजा उनको प्रणाम करते हैं वल्लभ देव, और बाकी लोगों को गुस्सा आता है, वो कहते हैं ये अनपढ़ गवार विष्णु चित्त ये माला बनाता रहता है भगवान के लिए, ये क्या वेदों की बातें करेगा, ये शास्त्रों के बारे में क्या जानता है। इस प्रकार से जब सोच रहे थे तो फिर जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया भगवान की कृपा से, उन्होंने परम भगवान की महिमा को स्थापित किया बोल्डली, और सब लोग आश्चर्य व्यक्त करने लगे। और जैसे उन्होंने स्थापित किया विष्णु को परम श्रेष्ठ है, तो उसी क्षण वो जो गोल्ड कॉइन से भरा हुआ थैली है वो अपने आप ही गिरकर विष्णु चित्त के हाथ में या गोद में आकर गिर जाता है। और फिर वो राजा ये जो विष्णु चित्त है उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनको एक हाथी पर बिठाते हैं, और हाथी पर बिठाकर उनका उनका बहुत प्रोसेशन निकालते हैं उनके गौरव को बढ़ाने के लिए राजा। तो उस समय भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने सोचा कि हमें जल्दी जाना चाहिए क्योंकि ये प्रोसेशन मिस ना हो जाए। किसको देखना चाह रहे थे? अपने भक्तों को देखना चाह रहे थे जो एलिफेंट पर बैठकर आज सब उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका गौरव बढ़ रहा है। तो ऐसे वो बैठे हुए थे एलिफेंट पर, उसी समय भगवान लक्ष्मी देवी के साथ प्रकट हो जाते गरुड़ा पर। और जैसे भगवान वहां प्रकट होते हैं और उस समय फिर ये विशेष प्रार्थना करने लगते हैं। एक तो कहते मेघ श्याम हो कोमल अंगो, कि आपका वर्ण उन बादलों के समान है जिनमें जल अभी भी भरा हुआ है, और आपका शरीर कोमल अंगो, आपका शरीर मक्खन की तरह कोमल आदि है। इस प्रकार से भगवान ने जब देखा, फेरी अलवर ने जब भगवान को देखा तो उस समय उनके हृदय में भगवान के प्रति स्नेह की भावना, प्रेम का भाव उमड़ आया बहुत अधिक। और जैसे प्रेम की भावना उमड़ आए तो बोलना चाह रहे थे, भगवान का स्तुति करना चाह रहे थे, तो तुरंत भगवान की स्तुति उन्होंने की, तो उनके मुख से एक विशेष स्तुति निकली जिसको कहते हैं तिरुप पलंडू। क्या कहते हैं? तिरुप पलंडू, जिसका मतलब है पलंडू मीन्स आशीर्वाद। तो फर्स्ट टाइम ये जो अलवर राज में किसी भी अलवर ने भगवान को आशीर्वाद नहीं दिया या आशीर्वाद रूपी प्रेयर्स नहीं की, हमेशा हर भक्त या हर अलवर भगवान से आशीर्वाद की कामना करता है, लेकिन ये फर्स्ट अलवर है क्योंकि ये वात्सल्य भाव में थे। कौन से भाव में थे? वात्सल्य, और भगवान को आशीर्वाद देते हैं चिरंजीवी भव। भगवान को वहां देखते हुए दूर से कहते हैं आप चिरंजीवी भव, आपका जो सौंदर्य है वो परमानेंटली अस्तित्व में रहे। और दूसरी प्रकार की एक स्तुति उन्होंने लिखी भगवान के लिए जिसको कहते हैं पेरिय अलवर तिरुमेली। क्या कहते हैं? पेरिय अलवर तिरुमेली। इस प्रकार से पेरिय अलवर ने यशोदा माता का भाव को स्वीकारा था, और उस भाव में भगवान को वो आशीर्वाद दे रहे थे, और जिसके कारण सारे ब्राह्मणों ने उनको एक विशेष पदवी प्रदान की, जो पदवी थी पट्टर पिरान। क्या पदवी थी? पट्टर पिरान मीन जो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है। तो जब वो स्तुति कर रहे थे तो उनको लगा स्तुति करते समय कुछ करतल भी बजना चाहिए, जैसे हम कुछ सॉन्ग या कीर्तन करते तो जो करतल बजता है तो अच्छा लगता है। तो ये एलिफेंट पर बैठे थे, अभी सोचा करतल तो नहीं है, एलिफेंट ने घंटी पहना था। क्या पहना था? वो घंटी एक हाथ से बजाने लगे झुककर, और वो भगवान का देख देखते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार से पेरी अलवर भगवान का गुणगान करते हैं, और उन्होंने राजा को भी आशीर्वाद दिया, और वो अपने ही स्तुति में पेरी अलवर तिरुमेली में कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे कभी भी आपकी जो माला बनाने की सेवा है उससे दूर नहीं करो। इस प्रकार से वो सदैव भगवान की सेवा चाहते थे और वो कहते थे कि मैं जीवन भर ये जो सेवा है कंटिन्यूअसली करता रहूं। हाँ, और भगवान के लिए उन्होंने जो स्तुति लिखी 12 श्लोकों में, उन श्लोकों में उन्होंने केवल यही लिखा है कि हे कृष्ण आपका सौंदर्य करोड़ों साल बना रहे। भगवान का आशीर्वाद रूपी ये जो उनकी स्तुति है या प्रार्थना है। इस प्रकार से पेरी अलवार ने ये विशेष स्तुति लिखी है और भगवान के बहुत प्रिय थे। फिर पेरी अलवार वहां ही रहते थे उस स्थान में श्रीवेल्ली पुत्र में। तो एक दिन पेरी अलवर जाते हैं माला बनाने के लिए, पुष्प चयन और तुलसी तोड़ने के लिए जाते हैं। तो सुबह सुबह जब तुलसी तोड़ने के लिए गए भगवान के लिए, तो उन्होंने एक तुलसी वृक्ष के नीचे एक छोटी सी बालिका नजर आई, छोटी सी बच्ची। और वो कौन थी? अंडाल गोदा देवी, अंडाल गोदा। ये 12 अलवरों में एक ये स्त्री है जो एक अलवर है। 11 अलवराज है मेल और एक अलवर क्या है फीमेल है। ये साक्षात भूदेवी की इनकार्नेशन है और इनका अवतरण कृतमाला नदी के तट पर होता है और कली के पहले 100 साल बीते थे। ये पेरी अलवर की पुत्री के रूप में गोदा अंडाल ने जन्म लिया था। अभी हम अलवर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं, गोदा अंडाल। तो ऐसी गोदा अंडाल जो भगवान के माधुर्य भाव में सेवा करते थे। तो ये वास्तव में ये विश्वचित्त ब्रह्मचारी थे लेकिन उनकी ये बेटी थी गोदा अंडाल जो उनको तुलसी के नीचे मिले थे। जिस प्रकार से जो शिर ध्वज जनक है उनको सीता देवी मिली थी जब यज्ञ के स्थान को वो हल से कर रहे थे, खोद रहे थे, तो उस समय उनको वो मिले थे। तो गोदा का मतलब है, गो मीन्स क्या है? गाय। गो मीन्स गाय या गो मीन्स इंद्रिया भी है। हा? और जो दा मीन्स जो प्रदान करेगी, प्रेयर्स या स्तोत्रास देने वाली है या भगवान को आनंद देने में सक्षम है। इस प्रकार से उनको गोदा अंडाल के नाम से पहचाना जाता है। और जैसे मैंने कहा था तमिल में अंडाल मीन्स, वैसे आंध्रा में उनको गोदा देवी कहते हैं और तमिल में उनको अंडाल के रूप में अधिक रूप से जाना जाता है। और अंडाल मीन्स जो अपनी दुनिया में सदैव मग्न रहता है। हाँ, तो वो कृष्ण की दुनिया में मग्न है गोदा देवी या अंडाल। उनको किसी और से लेना देना नहीं है, किसी और स्थान में उनका मन नहीं लगता। तो ये जो गोदा देवी है या अंडाल है, इनके पिता विश्वचित्त जब मालाएं बनाते थे ये उन मालाओं के साथ खेला करते थे। और उनके घर में एक शीशा था या कई स्थान में वर्णन आया है कि एक तालाब था छोटा सा घर के सामने। ये गोदा देवी जब उनके पिता ने जो माला बनाए हैं भगवान के लिए विष्णु के लिए, वो माला वो पहन लेती थी ऑफरिंग करने से पहले और शीशे के सामने जाकर अपने आप को देखती थी। कैसे देखती थी? कि मैं कितने सुंदर लग रही हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, कि ये माला पहनकर कृष्ण वास्तव में सुंदर लगेंगे या नहीं, ये माला सही है या नहीं है, इस मूड से वो पहनती थी भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। तो जब एक दिन पेरी अलवर भगवान को ये माला पहना रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे, तो उनको क्या नजर आया? एक बाल, लंबा सा बाल। उन्होंने कहा, अरे कभी आज तक ये नहीं हुआ कि लंबा बाल माला में आया कैसे। अरे लंबा बाल मीन्स किसी स्त्री का बाल है और जरूर किसी स्त्री ने ये माला पहनी हुई है भगवान को अर्पण करने से पहले। तो उनको याद आया कि मेरी जो पुत्री है गोदा अंडाल ने शायद ये काम किया होगा। तो गोदा देवी या अंडाल को जाकर पूछते हैं तो उनको पता चलता है कि ये उसने ये हरकत की थी, ये रोज पहनती थी, लेकिन आज पता चला था बहुत दिनों के बाद। और फिर इन्होंने उस माला को साइड कर दिया और नया माला बनाकर भगवान को डालना चाहा। भगवान गुस्सा हो रहे थे, हाँ भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा हे पेरी अलवर, हाँ कि बल्कि पेरी अलवर सोचते थे कि गोदा देवी ने या अंडाल ने पहनी हुई माला अशुद्ध है, वो कैसे मैं कृष्ण को या विष्णु को पहनाऊं। तो लेकिन भगवान उनको पेरी विष्णु चित्त को डांटने लगे। भगवान ने कहा उसके शरीर का जो सुगंध है उससे वास्तव में वह शुद्ध हो जाता है और मैं प्रफुल्लित हो जाता हूं जब उसने पहना हुआ माला मैं धारण करता हूं। इतना प्रेम भगवान को हुआ था। ये वैसे ही है जिस प्रकार से भगवान राम शबरी के झूठे बेर उनको अच्छे लग रहे थे, उसी प्रकार से ये माला अंडाल गोदा देवी ने जब धारण की उसको पहनना कृष्ण को या भगवान वटपत्र शाही को अच्छा लगता था। और इस प्रकार से गोदा देवी की अभी उम्र बढ़ रही थी, बड़ी हो रही थी। एक समय आया विवाह के योग्य आयु उनकी हो गई और वो हमेशा गोपी भाव में भगवान की सेवा करते थे, गोपीज के मूड में रहते थे कृष्ण की सेवा में। और कई उनको विवाह के प्रस्ताव आए तो उन्होंने कहा मैं किसी साधारण व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी, मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं इस संसारिक पुरुष से विवाह करूंगी। इतना बड़ा उनका व्रत था, सोचो कितना बड़ा दृढ़ व्रत इस प्रकार से लिया गोदा देवी अंडाल ने। और फिर फाइनली जिस प्रकार से रुक्मिणी ने भी बोला है, भागवतम में पढ़ेंगे तो रुक्मिणी देवी भी यही कहती है कि मैं ऐसे भौतिक पुरुष से विवाह नहीं करूंगी। तो फिर पेरी अलवर ने कहा तुम किससे विवाह करोगी बेटी, बताओ। बेटी जब बड़ी हो जाती है तो माता पिता को टेंशन होता है, जैसे आप लीलामृत में पढ़ते हो, हाँ प्रभुपाद लिखते हैं वहां, कहते हैं एक स्टॉप में कि मेरी बेटी की आयु कितनी हो रही थी, 11 साल हो रही थी। उस समय तो जल्दी विवाह करते थे, 11 साल की हो गई तो मेरे पत्नी को बहुत टेंशन हो गया। उसने कहा इसका विवाह की तैयारी करो नहीं तो मैं गंगा में जाके आत्महत्या करूंगी। प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं कि मेरे पत्नी ने कहा, हाँ तो वो एक टेंशन है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, उचित रूप से कन्यादान या विवाह होना चाहिए सही समय पर। तो उसी प्रकार से इन्होंने सोचा, कहा हे बेटी तुम किससे विवाह करोगी। तो इसने कहा हाँ मैं इस भौतिक जगत के व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। तो फिर इन्होंने पेरी अलवर ने फिर भगवान का गुणगान करना शुरू किया। और इनके पास कितने प्रस्ताव थे, पेरी अलवर के पास 108, कितने 108 दिव्य देशों में 108 डीटीज हैं, कृष्णा है या विष्णु है, और वो तैयार थे। तो अभी इनको चूज करना था कि मुझे किससे विवाह करना है। तो पेरी अलवर एक एक दिव्य देशम के विग्रह का वर्णन कर रहे थे। उस समय तो ऐसे नहीं था कि प्रोजेक्टर लगा के फोटो दिखाते रह गए वो, चलो नेक्स्ट नहीं, वहां तो आपको वर्ड्स में प्रयोग करना है, बताना है, पिक्चराइज करना है, शब्दों में उनके गुणगान को सुनाना है। तो पेरी अलवर ने भगवान के अलग अलग ये जो 108 दिव्य देशम के जो विग्रह हैं उनके बारे में बोलना शुरू किया। तो गोदा अंडाल जब सुन रही थी तो उनको लगा ये नहीं ये नहीं ये नहीं। फाइनली किसके बारे में सुना, फिर रंगनाथ देव के बारे में। जैसे रंगनाथ का वर्णन शुरू हो गया तो उनका हृदय कंपन होने लगा क्योंकि रंगनाथ से प्रेम था और आंखों से आंसू बहने लगे, स्वाभाविक पसीना छूटने लगा। हाँ ये प्रेम के लक्षण है रंगनाथ के प्रति, भगवान के प्रति। नाम सुनने मात्र से शरीर रोमांचित हो जाता है। तो ऐसे जब रंगनाथ के बारे में सुना तो वो रोने लगे और तब उसने उन्होंने हृदय में ठान लिया कि मैं विवाह किससे करूंगी, तो किससे, रंगनाथ जी से विवाह करूंगी। तो उस समय तब उनके मुख से स्तोत्रार्थ निकले, प्रेयर्स, वो यहाँ बहुत फेमस है, तिरुपवई। हाँ तो तिरुपवई कहते हैं उसको, 30 सॉन्ग्स हैं जो मार्गी मास में गाए जाते हैं और डेली एक प्रेयर चांट करते हैं। जैसे हम कई मंदिरों में गए अंडाल तो वहाँ 30 प्रेयर्स लिखे थे, 30 मार्बल्स लगाए थे जिसमें प्रेयर्स हैं उनके। तो इस प्रकार से जैसे नॉर्थ में कार्तिक में बहुत हम गुणगान करते हैं, वैसे श्री वैष्णव आज मार्ग शीर्ष में एक सॉन्ग है मार्गे पिंगलम। एक माता जी इसकॉन डिवोटी है, वो लोग साउथ इंडिया आ रहे आए थे, तो मैंने उनसे सुना था एक सॉन्ग। हाँ, बहुत सारे डिवोटीज आए थे अराउंड मुंबई से आए थे, तो साउथ इंडियन माता जी थी यहाँ की, वो मुंबई में रहती हैं, तो उन्होंने उनको वो इस्कॉन डिवोटी हैं, लेकिन उनको गोदा अंडाल के सारे प्रेयर कंटस्थ हैं, और इतना परफेक्टली गा रहे थे मार्गी पिंगलम एक सॉन्ग था। मैं उसको ढूंढने का प्रयास किया कि कहाँ ये मिलेगा। तो ऐसे प्रेयर्स को यहाँ मार्गशीर्ष महीने में भगवान रंगनाथ की स्तुति में सारे लोग गाते हैं। और दूसरा उनका प्रेयर्स है दूसरे टाइप का, जिसको कहते हैं नाचियार तिरुमोई, जिसमें 143 वर्सेस है। तो इस प्रकार से पेरी अलवर की अभी चिंता तो खत्म हो गई और वो आराम से नींद आने लगी। क्या अभी क्या फाइनल हो गया था, वर फाइनल हो गया था कि अभी रंगनाथ से विवाह करेगी मेरी बेटी बस। तो लेकिन इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। तो यहाँ रंगनाथ स्वामी को भी इतना हृदय में आक्रांत, उनसे प्रेम उमड़ उठा कि वहां जब पेरी अलवर सो रहे थे उनके स्वप्न में जाकर कहते हैं कि मैं अंडाल गोदा देवी से विवाह करना चाहता हूं। अभी फुल्ली कंफर्म, दोनों पार्टियों का कंफर्म हो गया। यहाँ रंगनाथ ने भी बोल दिया और रंगनाथ ने कहा तुम्हें कोई चिंता करने की कारण नहीं है, टेंशन नहीं है, मैं सारी व्यवस्था करूंगा। तो रंगनाथ स्वामी ने भगवान ने क्या किया, तब पुजारी के स्वप्न में जाते हैं और उसको कहते हैं कि उठो बड़े सी पालकी लेकर जाओ, ब्राह्मणों को लेके जाओ, ढोल नगाड़े बजाते हुए उस स्थान में जाओ और पालकी में बिठा कर किसको लेके आओ, अंडाल को लेके आओ, गोदा देवी के लेके आओ। चलो दिया तो पी लेता। तो ये सारा ग्रुप जाता है और गोदा देवी क्या करती हैं, निकलने से पहले जब ये पालकी और सब कुछ उनके घर के सामने पहुंच गया तो गोदा देवी वहां के जो उनके डेटीज थे वटपत्र शाही, उनका परमिशन लेने के लिए गई, उनको प्रणाम आदि करती हैं और फिर जाकर उस पालकी में बैठती हैं और सारे ब्राह्मणास पुजारी सब उनको नाचते गाते हुए रंगनाथ की स्तुति करते हुए यहाँ लेकर आते हैं। और पर्दा क्लोज होता है पालकी का, फिर जब यहाँ आते तो पर्दा वो खोलती है और पालकी से अपने चरण यहाँ रंग क्षेत्र में डालती हैं। डालते ही और वो वैसे सच कर आई थी जिस प्रकार से विवाह के लिए कन्या सचती धजती है, तो वैसे आई गोदा अंडाल और जैसे उतरी उसी क्षण इधर उधर न देखते हुए सीधा रंगनाथ देव के उस गर्भगृह में प्रवेश किया। वहां जैसे उन्होंने प्रवेश किया और भगवान के चरणों के निकट पहुंची और जाकर उस चरणों के पास जाकर चढ़ी और वहां सबके आंखों के सामने भगवान रंगनाथ के दिव्य विग्रह में लीन हो जाती है, वन सेंस अप्रकट हो जाती है। तब से भगवान को नया नाम पड़ा, केशव नम्मीय काल पेरिमाल। क्या नाम पड़ा, केशव नम्मीय काल पेरिमाल। हाँ, तो इस प्रकार से जो गोदा देवी है वो भगवान की विशेष, अभी मुझे भी देखना पड़ेगा, केशव नम्मीय काल पेरिमाल, केशव नम्मीय काल पेरिमाल। तो इस प्रकार से गोदा देवी भगवान की प्रिय बनती हैं और रंगनाथ की सेवा में वो निरंतर लगी रहती हैं। तो जहां भी आप जाते हो साउथ के टेंपल्स में, वहां गोदा देवी के विग्रह या अंडाल के विग्रह जरूर दर्शनीय हैं। इवन आप तिरुपति जाओगे, कांचीपुरम में भी जाओगे, यहाँ दो टेंपल्स है गोदा देवी के। एक तो सुबह हमने दर्शन किया, उस दिन में परसों आपको दर्शन कराना भूल गया, चंद्र पुष्करणी के तट पर राम लक्ष्मण सीता का हमने दर्शन किया था, याद है किसी को? उसी के साथ ही एक टेम्पल है, उसी को लगा हुआ है एक ही दीवार, और इतने वंडरफुल डिटेल्स है गोदा देवी अंडाल के, और 12 अलवराज भी है वहां, 12 अलवर एक साथ है, और गोदा देवी और अंडाल का, अंडाल का बहुत वंडरफुल श्रृंगार, सबसे सुंदर विग्रह है वहां। शाम को आप जरूर वहां विजिट कर सकते हैं यदि समय मिला तो। गोदा देवी अंडाल के, श्रील प्रभुपाद की। तो अभी अगले अलवर हैं, क्या है नेक्स्ट अलवर, नेक्स्ट अलवर कौन से हैं? देखिए अपने नोट्स देखिए, मैंने बोलूंगा तोंडरादी पोड़ी अलवर। क्या नाम है? तोंडरादी पोड़ी अलवर। ये बहुत विशेष, तोंडरादी पोड़ी अलवर। तो इनका जो जन्म है मंदनगुड़ी स्थान में हुआ था, कुंभकोणम के पास, मार्गशीर्ष महीने में। और इन्होंने भगवान के लिए के विशेष रूप से 14 सॉन्ग्स में भगवान की स्तुति की है। तो ऐसे तोंडरादी पोड़ी अलवर का जो पहले नाम था विप्र नारायण, क्या नाम था? विप्र नारायण। तो ये विप्र नारायण, ये दो अलवर ऐसे थे जो भगवान की फ्लावर सेवा करते थे, एक तो तोंडरादी पोड़ी अलवर और दूसरे कौन से थे? पेरी अलवर। ये दो अलवर थे जो भगवान की फ्लावर सेवा करते। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ी सेवा होनी चाहिए, सारी सेवाएं एक समान है। तो इतने महान महान अलवर इतनी सरल सेवा करते हैं और भगवान के महान प्रिय बनते हैं। तो ऐसे तोंडरादी पोड़ी अलवर जिनका नाम था विप्र नारायण ब्राह्मण थे, और ये श्रीरंगम में ही निवास करते थे और रेगुलरली ड्यूटीज को सेवा करते थे। और जो चौथा दीवार है उस एरिया में एक गार्डन था जिसमें वो फ्लावर्स को कल्टीवेट करते थे, वृक्षों को, और फ्लावर्स आदि तोड़ा करते थे, हम उगाया करते थे। और बहुत समय बीता उनकी सेवा के लिए, और सारे श्रीरंगम के लोग, इवन राजा भी उनसे प्रभावित थे, और सारे लोग उनका आदर और सम्मान करते थे, और इतने मग्न होते थे अपनी सेवा में कि यदि फ्लावर्स तोड़ते तोड़ते सांप भी नजर आए तो भी उससे विचलित नहीं होते थे, आगे पाव डाल के ये बोलते हुए जाते थे नो फ्लावर्स। क्या बोलते थे? अभी फ्लावर्स नहीं है, आगे चले जाते थे। मतलब वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते थे और पूर्ण रूपे न मग्न थे रंगनाथ की सेवा में फ्लावर्स के लिए। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार एक जो युवती है जिनका नाम था देवदेवी, क्या नाम था? देवदेवी। वो अपने जो एल्डर सिस्टर, जो बड़ी बहन है, उनके साथ एक स्थान से वापस आ रहे थे। जो और ये देवदेवी का काम था वास्तव में एक प्रकार की प्रोस्टिट्यूट थे, और दूसरा कि राजाओं के सामने नृत्य करना, गीत गाना, इसमें वो मास्टर थी, धुरंधर थी, और इतनी अतुलनीय सुंदर थी ये युवती कि राजागण उसको देखने के लिए, उसका नृत्य देखने के लिए, उससे बात करने के लिए लाइन में खड़े हो जाते थे, देवदेवी से इतने प्रभावित थे। बल्कि उसको इतना अपने सौंदर्य आदि का घमंड था कि उसने तो ऐसी व्यवस्था की थी कि कोई भी राजा मुझे मिलने आए, मुझे देखने आए तो उसको अपने सर पर क्राउन नहीं रखना है, मुकुट नहीं रखना है, उस मुकुट को अपने हाथ में लेकर किससे मिलने आना पड़ेगा? देव देवी से मिलने आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये उस स्थान से यहां पहुंच जाती हैं, और पहुंचकर जब वो थकी होती हैं तो इस गार्डन में आकर बैठ जाती हैं, और बैठकर ये दोनों जो बहने थे देवा देवी और उनके जो बड़े सिस्टर थे वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, और अचानक ही विप्र नारायण, ये जो विप्र नारायण, हाँ ये विप्र नारायण वहां पहुंचते हैं अपने फ्लावर्स तोड़ने के लिए अपने बास्केट के साथ, और वो दोनों जो युवतियां थी स्त्रियां थी वो इनको देखने लगी। अरे बहुत अधिक सुंदर थे, जिनकी आंखें कमल के समान थे, और ये जो विप्र नारायण रंगनाथ से अधिक प्रेम रखते थे और युवा थे, और ये वो फ्लावर्स तोड़ते तोड़ते वहां पहुंचे और उन्होंने ध्यान नहीं दिया देवी देवा के पास। क्या नाम था?
देव देवी।
तो मैं जब बहुत पहले पढ़ा था ये पास से, तो मैंने इसको याद रखने के लिए शॉर्टकट सोचा था, डीडी देवीदासी, इसका मैं थे ना, इस देवीदासी, क्या था? देव देवी। तो देव देवी जिसको अपने सौंदर्य आदि का इतना घमंड था, उसने देखा कि अरे ये तो, अब वो आ गए फ्लावर्स तोड़ते तोड़ते वहां बैठी थी ये दोनों, इनकी ओर देखा ही नहीं, और तोड़ते तोड़ते आए और उसने कहा नो फ्लावर्स, यह क्या नहीं है, फ्लावर्स नहीं है। इस प्रकार से वो आगे चले जाते हैं। इसको इतना घमंड होता है कि मैं इतनी सुंदर हूं, मुझे इसने देखा नहीं है। अभी मैं चैलेंज करती हूं, अपने बड़े सिस्टर को कहा कि 9 डेज में ये जो विप्र नारायण है मैं ऐसा करूंगी कि ये मेरा दास बनेगा। क्या बनेगा? दास बनेगा। तो ये संगीत कला में भी बहुत निपुण थे, गाते भी बहुत सुंदर थे। तो ऐसे देव इसने ये जब ठान लिया, उसके जो बड़े सिस्टर थे उन्होंने कहा ये आपके लिए उचित नहीं है। इसने कहा मैं ये कार्य करके देखूंगी करूंगी, और यदि नहीं हुआ तो 6 महीने के लिए आपकी दासी बनूंगी और आपके कपड़े रोज धोऊंगी। ये दोनों सिस्टर्स ने ये ऐसा वार्तालाप हो रहा था, और विप्र नारायण तो मग्न थे अपने सारी सेवाओं में। तो इसने कहा मैं अभी घर वापस नहीं जाऊंगी, ये दोनों ऑन द वे टू होम थे, लेकिन इसने कहा मैं अभी घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहां ही रहूंगी चौथे स्ट्रीट में, यहाँ चौथे वॉल के अंदर, और यहाँ इनको मेरा दास बनाकर ही रखूंगी। इस प्रकार से इसने व्रत लिया, तुरंत अपने जो ऐश्वर्यशाली वस्त्र थे उसको उन्होंने छोड़ दिया, सारे अलंकार आदि उतारे, और सर्वसाधारण वस्त्र धारण करके एक तपस्विनी वैरागिनी का वेश धारण करके वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगी। लेकिन किसका ध्यान कर रहे थे? विप्र नारायण का। विप्र नारायण को देखा करते थे, और इस प्रकार से वो करते जा रहे थे, और इसने फिर उन प्रेयर्स को भी सीखा जो विप्र नारायण ने कंपाइल की थी, उनको गाते थे मधुर स्वर स्वर में। विप्र नारायण ने देखा कि इतनी तपस्या आदि कर रही है मेरे गार्डन में है, तो उसने कहा कि मुझे कुछ सेवा में लगाओ। तो उन्होंने उनको सेवा लगाई, फ्लावर्स को तोड़ना, उनको पानी डालना, ऐसी कुछ छोटी छोटी सेवाएं लगाई, और कुछ गाना, इस प्रकार की सेवाओं में उनको एंगेज किया। और फिर ये जो युवती थी उसने झूठे ही ये कहना शुरू किया कि किस प्रकार से मेरी माता ने मुझे फोर्सफुली कुछ ही दिनों में प्रोस्टिट्यूट बनाने वाली है, उसी व्यवसाय में मुझे एंगेज करने वाली है। इस प्रकार से ये वृक्ष के नीचे रहती थी, और इनकी सहानुभूति उन्होंने प्राप्त की विप्र नारायण की। और एक दिन जब बहुत बारिश आई तो उसमें इसके पास एक ही वस्त्र थे, और फिर विप्र नारायण ने सोचा कि ये तो युवती बहुत सरल है जो हमेशा सेवा में लगे रहती है, गीत गाती है, और उसके पास तो एक ही वस्त्र है, और उस वो रहने के लिए भी प्लेस नहीं है। तो उन्होंने एक छोटा सा कुटिया जो उनके पास था वो दिया, और अपने वस्त्र भी उनको पहनने के लिए दिए कुछ दिनों तक। और फिर उस युवती ने कहा हाँ कि मैं ये आप मुझे बचा सकते हो, अन्यथा मेरी माता मुझे ऐसे घृणित व्यवसाय में एंगेज करेगी। इस प्रकार से जब विष्णु चित्त का सहानुभूति उसने हासिल किया, तो विष्णु चित्त को कहा कि आप मुझसे विवाह कीजिए। विष्णु चित्त विष्णु चिंतन है, विप्र नारायण। विप्र नारायण की सहानुभूति उन्होंने हासिल की और विप्र नारायण भी उनसे आकृष्ट हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि हाँ ये संभव है, उनका आलिंगन करते हैं और उनको दिलासा प्रदान करते हैं। और जब विप्र नारायण पूर्ण रूप से आसक्त हो गए तो इन्होंने कहा अभी सही समय है इनसे दूर जाने का। तो विप्र नारायण के जीवन में यह स्थिति आई कि वो रंगनाथ के लिए रोते थे, अभी किसके लिए रो रहे थे, देव देवी के लिए। तो हमेशा देव देवी कहते जा रहे थे और देव देवी अभी अपने घर चली गई, यहाँ श्रीरंग में इसका स्थान था। और जब ये घर चली गई और अभी वो मिलना नहीं चाह रही थी विप्र नारायण को और बहाने बना रही थी उनसे अलग रहने का, तो विप्र नारायण कई बार उनके घर जाते, उस स्थान में जाते, उनकी मदर वहां हुआ करती थी। जब ये विप्र नारायण वहां पहुंचे, उनकी माँ ने कहा, देव देवी के माँ ने कहा कि वो तो चले गई हैं, आउट ऑफ सेशन है। तो विप्र नारायण दुखी होकर आकर रंगनाथ का एक मंदिर है जहाँ रामानुजा का टेम्पल है, उससे आगे एक हॉल है, उधर जाके बैठते हैं चिंता में, हाँ देव देवी का स्मरण करते हैं। तो उस समय भगवान बाहर निकले थे लक्ष्मी के साथ, रंगनाथ किसके साथ निकले थे, रंगनायकी के साथ, सही है। तो जब निकले थे तो रंगनायकी हंसने लगी, लक्ष्मी देवी क्या होने लगी, हंसने लगी, किसको देखकर, विप्र नारायण को देखकर, देखो आपका डिवोटी। तो रंगनाथ को लगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, हाँ मुझे इसको मिलाना पड़ेगा। तो रंगनाथ स्वामी जब उनकी पूजा वगैरह हो जाती है वो कहते नहीं, मैं इनके दुख को देख नहीं सकता मेरे डिवोटी के। तो कहते क्या करना होगा मुझे, अभी विप्र नारायण के पास तो धन नहीं था देव देवी को अप्रोच करने के लिए। तो भगवान उनके 5 स्पेशल पॉट्स है पूजा के, तो उसमें से एक जो बर्तन है भगवान उठा लेते खुद ही, और रंगा क्या किस नाम से जाते हैं, एक रंगनाथ सर्वेंट बनते हैं और नाम धारण करते रंगा, क्या नाम धारण करते रंगा, अपना बर्तन उठाते हैं। देव देवी का जो घर था, हाँ उसकी माँ उनसे मिलना नहीं देते थे, उसके पास जाते और कहते ये रहा। रंगा जाकर कहते हैं कि मुझे विप्र नारायण ने भेजा है एक गोल्डन बर्तन देकर, हाँ ताकि वो किन से मिल सकते हैं, देव देवी से मिल सकते हैं। तो वो तो बहुत खुश होती है, उस बर्तन को लेकर वो पीलों के नीचे रखती है, छुपाती है, और फिर देव देवी को कहते हैं, देव देवी आपसे मिलना चाहते हैं, कौन, विप्र नारायण। तो यहां जब पुजारी सुबह सुबह टेम्पल में चले गए, देखा कि पूजा में जो 5 बर्तन यूज होते हैं उनमें से एक बर्तन मिसिंग है। अभी फिर सर्च शुरू हो गया, सबसे पहले किसको पकड़ते थे, पुजारी को ही पकड़ते, उनको इजी एक्सेस होता है। तो देखा कि किसी के पास नहीं है, राजा ने सब श्रीरंगम में ढूंढना शुरू करवाया सैनिकों के द्वारा। देव देवी के घर में एक सेविका थी, उसको पता था ये, उसने देखा था ये बर्तन कहां से आया हुआ है, रंगनाथ के बर्तनों से एक बर्तन है, और उसने जाकर राजा को बोल दिया कि यहां देव देवी के घर में एक बर्तन है और वही हो सकता है रंगनाथ का। तो सैनिक आते हैं, छापा डालते हैं और वो बर्तन हासिल करते, तो देखते थे किसका बर्तन था, रंगनाथ देव का था। और उस बर्तन को लेते हैं राजा और तो उसको पूछते हैं देव देवी के मदर को कि किसने बर्तन भेजा है, तो वो कहती है किसका नाम लिया, हाँ विप्र नारायण को, फंस गए ना, विप्र नारायण को जेल, सीधा कहा भेजा राजा ने, जेल, हाँ देव देवी के कारण एक प्रकार से। तो वो जेल में थे, राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था रंगनाथ का बर्तन। तो रंगनाथ स्वामी राजा के स्वप्न में जानते हैं, कहते हैं हाँ ये बर्तन इन्होंने चुराया नहीं है, किसने नहीं चुराया, विप्र नारायण ने नहीं चुराया, ये बर्तन वास्तव में मेरा बर्तन है और मैं खुद लेकर गया था देने के लिए, कहाँ पहुंचाने के लिए गया था, देव देवी के घर में। इस प्रकार से राजा को कहते हैं कि वास्तव में मेरा ये जो डिवोटी है विप्र नारायण हाँ वो छोड़ नहीं है और मैं ही वहां पहुंचा था। बल्कि देव देवी ने सोचा उनके घर में तो कोई पुरुष सेवक नहीं है, वो बेचारे अकेले रहते हैं, गार्डन में सेवा करते हैं, लेकिन कौन बल्कि भगवान क्या बनकर गए थे, किसका सेवा? विप्र नारायण का सेवक। तो जो विप्र नारायण राजा ने उनको मुक्त किया, और जब उनको मुक्त किया राजा ने, तो फिर राजा उनके चरणों में आकर गिर जाता है, और राजा जब उनके चरणों में गिरता है और फिर उनको छोड़ देता है, और फिर ये जो अलवर है विप्र नारायण है, वो भगवान की याद आती है उन्हें। वो कहते हैं कि मेरे प्रभु कितने भक्त वत्सल है, मतलब मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूं, लेकिन वो मेरा सेवक बन के गए। किसका सेवक बन के गए? कि मैं विप्र नारायण का सेवक हूं। रंगा, क्या नाम है मेरा? रंगा। सोचो, उन्होंने सोचो इतना प्रेम इस संसार से, देव देवी ने भी मुझसे इतना प्रेम नहीं किया, जितना प्रेम किसने किया मुझसे? अफेक्शन, वात्सल्य मुझे किसने दिखाया? तो वास्तव में रंगनाथ स्वामी ने। तो उनके मुख से फिर बहुत सारी विशेष विशेष जो प्रार्थनाएं हैं निकल आई, उनकी जीवा हिलने लगी, उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, और हृदय में प्रार्थनाएं भर उठी। उन्होंने कहा कि हे प्रिय रंगनाथ, कि आपने वास्तव में मेरे जैसे पापी व्यक्ति के लिए आपने चोरी स्वीकार की, और रंगन श्री रंगम के सड़कों में आप चलने लगे एक बर्तन को उठाकर, और सारे रास्ते में ये बोलते हुए कि मैं तो विप्र नारायण का सेवक हूं, मैं तो विप्र नारायण का सेवक हूं, और जाकर देव देवी के महल में वो देते हैं, और आप उनको भी बोलते हैं कि मैं विप्र नारायण का सेवक हूं। हाँ, मतलब कितने आप महान हो, इस प्रकार का भावना विप्र नारायण के हृदय में जागृत हुआ। तो वो फिर सारे भक्तों के और भगवान के चरण कमल की धूली को अपने सर में लगाते हैं, तब से उनका नाम पड़ता है तुंड राधि फोड़ी अलवर। क्या नाम पड़ता है? तुंड राधि फोड़ी अलवर। तो इस प्रकार से ये वंडरफुल अलवर्स हैं, जिनका महिमा सुनना, उनका गुण गाना हमारे लिए बहुत लाभप्रद है, और वास्तव में अत्यधिक इंस्पायरिंग है। इस प्रकार से हमने लगभग कितने अलवर्स कवर किए? 10। तो अभी 2 अलवर्स बचे हैं, तो मैं कल आने वाले 2-4 दिन में ट्राई करेंगे हम बाकी 2 अलवर्स का वर्णन करेंगे। कौन से 2 अलवर्स हैं? तिरुपन्न अलवर, तिरुमंगई अलवर। मोस्ट पावरफुल अलवर है तिरुमंगई अलवर। क्या है? मोस्ट पावरफुल। वो जब चलते थे, एक तलवार अपने हाथ में ऐसे रख के चलते थे, और जब ब्रिटिश का प्रोसेशन निकलता था, उस प्रोसेशन के सामने तलवार ऐसे रख के चलते थे, और उनकी नजर बहुत पावरफुल थी, इधर उधर देखते थे। यदि कोई भगवान की शरण में ग्रहण कर रहा है, उस पर तलवार, ऐसे पावरफुल थे। और उन्होंने ही वास्तव में रंगनाथ का टेम्पल बनाया है तिरुमंगई का, तिरुमंगई अलवर में। तो ये 2 अलवर से तिरुपन अलवर प्रकट हुए थे, श्री वत्स चिन्ह तिरुपन अलवर के रूप में अवतरित हुए थे, और भगवान का जो सारंग धनुष है वो तिरुमंगई अलवर के रूप में प्रकट हुआ था। तो उनके बारे में कल परसों हम सुनने का प्रयास करेंगे। हाँ, ट्राई करेंगे, तिरुपति से पहले चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेरी अलवर के अंदाल गोद देवी के और तुंड राधि कोड़ी अलवर के श्रील प्रभुपाद के रंग क्षेत्र रंगनाथ स्वामी की गौर प्रेमानंदे। तो अभी हम ड्रामा तैयार है आपका? ठीक है, तो ड्रामा एक फाइनल जो रंगनाथ श्रीरंगम की विशेष लीला जो चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उसको प्रस्तुत कर रहा है, तो उसको हम दर्शन करेंगे, देखेंगे। हरे कृष्णा।